ओम शांति। आज एक ऐसी हस्ती हम सभी के समक्ष बैठी है जिनको हम पिछले 33 साल अनुभव करते और अपने आंखों से उनके सारे कर्म चरित्र को देखते हैं, जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को देखा है। और ब्रिजेंद्रा दादी जो साइंस सेवा केंद्र पर रहते थे, उनकी पालना में छोटे बच्चे के जैसा पले हैं। दादी ने एकदम छोटे बच्चे जैसे आदरणीय नितिन भाई जी को पालना दी और उसी के स्वरूप में आज नितिन भाई जी इतनी सेवाएं दे रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, बाबा पर प्रगाढ़ विश्वास, नम्रचित्त, निर्मानता और छोटी छोटी बातों का विचार करने वाले, इस शब्द से किसी को क्या फील होगा, ऐसे विचार से कैसे वाइब्रेशन बनेगा, इस निर्णय से क्या होगा, ऐसे छोटी छोटी बातों पर विचार करके कर्म की गुह्य गति को जानकर हर बार अच्छे कर्म करना सिखाना, सपोर्ट करना, दुआएं देना, यही हमने आदरणीय नितिन भाई जी के जीवन में और उनके चरित्र में देखा है। ऐसे नितिन भाई जी के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से उनका अनुभव किया है। तो नितिन भाई जी का स्वागत करते हैं, जोरदार करता ध्वनि से हम स्वागत करते हैं और तालियां बजाइए नितिन भाई जी के लिए। और नितिन भाई जी का परम सौभाग्य ये कि हम सभी के लिए शक्ति स्वरूपा और शीतल स्वरूपा आदरणीय संतोष दीदी जी, जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना जोन के इंचार्ज है, उनके अंग संग में रहकर सारे जोन का कारोबार संभालने के लिए मददगार बनते हैं। ये नितिन भाई जी का बहुत बड़ा सम्मान भी है और यही उनका परम सौभाग्य भी है। तो बहुत सुंदर अनुभव हम सभी को बताएंगे, बाबा के साथ के अनुभव या फिर बाबा अव्यक्त होने के बाद भी जो जीवन में एक एक संकल्प से जो अनुभव करते हैं, वो अनुभव हम सभी के समक्ष रखेंगे। मैं नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय नितिन भाई जी जो सायन मुंबई से आए हैं, भाई जी के लिए मुझे चार पंक्ति याद आ रही है। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। वैसे आदरणीय नितिन भाई जी का जीवन व व्यक्तित्व उनका परिचय देता है। उनके बारे में बोलते हैं हम अनुभव करके, परंतु वो तो बोलते हैं खुदा के बारे में, खुदा से अनुभव करके। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के साथ तो हमारे 3 संबंध हैं, बाप, टीचर और सद्गुरु। मगर मैंने बाबा के साथ खुदा दोस्त का संबंध निभाया है और बाबा ने भी निभाया है। जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, आपस में एक दो से आप बात करते हैं, ऐसा मैं बाबा से सहज बात कर लेता हूँ। जैसे आप आपस में बात करते हैं वैसा मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। क्योंकि शुरू में जब 1962 में ज्ञान में आया, उस समय आपको सुन के अचरज लगेगा मगर मैं बांदेला कुमार था। बांदेली माताओं के बारे में तो आप सुनते हैं, मुरली में भी बाबा बताते हैं, मगर मैं बांदेला गोप था। तो हर समय और घर में सब लौकिक घर में मैं सबसे छोटा था, इसलिए सबको मेरे ऊपर अटेंशन ज्यादा था और बंधन भी ज्यादा डालते थे ताकि ये सन्यासी नहीं बन जावे। तो उन्होंने जितना प्रयत्न करना चाहिए वो सब प्रयत्न उन्होंने किए, मगर वो जितनी भी परीक्षा उन्होंने ली वो सब में हम बाबा की मदद से पास हो गया। अभी कुमारों का पहला संबंध आता है, प्रॉब्लम आता है खाने का। तो घर वालों ने देखा कि ये इनको कांदा लहसुन नहीं खाने का है, ऐसा हमने बोल दिया था घर में कि मुझे कांदा लहसुन नहीं खाने का है। तो इन्होंने क्या किया, दाल होती है, सब्जी होती है, उसमें कांदा लहसुन डालना शुरू किया। अभी उस समय हमारी आयु छोटी थी तो मुझे ऐसा कुछ देखने से मालूम नहीं पड़ जाता है, आपको तो गृहस्थियों को तो मालूम पड़ जाता है इसमें कांदा है इसमें लहसुन है, मगर हम तो किचन में जाते नहीं है, थाली आती है खा लेते, तो हमको ये कुछ मालूम नहीं था। मगर हमारी शुरू से आदत थी, सेंटर जो है हमारे लौकिक घर से 3 किलोमीटर दूर था, तो हमारी शुरू से आदत थी सेंटर पर जाना और सेंटर पर आना, पैदल ही जाना और पैदल ही आना। और उस 3 किलोमीटर में मैं बाबा से बात कर लेता था, तो बाबा ने हमको बता दिया था कि आज दाल में कांदा लाल है, तो मैंने कहा ठीक है। और बाबा ये भी बता देते थे बोलने का, आज पेट ठीक नहीं है, आज दही के साथ मैं चावल खाएगा। ऐसा क्या बोलना है वो भी मुझे मालूम पड़ जाता था, क्या करना है वो भी मुझे मालूम पड़ जाता था। तो फिर घर में जाते समय बोल देता था, आज तेरा तबीयत ठीक नहीं है, दही के साथ मैं आज चावल खाने वाला है। तो दाल तो बाहर हो गई, तो मैंने अपना नियम चला। ऐसे दूसरे बारी जब जाते थे तो बताते थे आज सब्जी में है, सब्जी में डाला हुआ है, तो वो भी मैं बाबा जो युक्ति बताते थे ऐसा करके उस विघन से तो पास हो गया। इन्होंने देखा कि इसको सब मालूम पड़ता है कि इसमें ये क्या लाए, तो ये खाने में अलर्ट है। फिर उन्होंने क्या सोचा कि अभी इसको पॉकेट एक्सपेंस, उस जमाने में हमको 5 रुपया पॉकेट एक्सपेंस मिलता था, 1962 की बात बताता हूँ, तो 5 रुपया पॉकेट एक्सपेंस मिलता था। तो मैंने सोचा कि अभी ये बंद हो गया है, तो मेरी शुरू से आदत थी दीदी के साथ जो भी आपकी लौकिक माना जो भी सेंटर की टीचर होवे, तो उस समय तो ब्रिजेंद्र दादी थी जिन्होंने बाबा का अवतरण देखा। आप सभी को मालूम है ना कि ब्रिजेंद्र दादी ने बाबा जब सृष्टि पर आए, निरंजन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ये जो महावाक्य ब्रिजेंद्र दादी ने पहले सुना था, तो मैंने दादी को जाके बता दिया। तो दादी ने अपना पर्स मंगाया और हमको दे दिया 5 रुपया, बोलता ये ले लो 5 रुपया, क्योंकि ऐसा लगता है ना ये अगर 5 रुपया नहीं मिलेगा तो ये माउस हो जाएगा, बच्चा है अभी, तो हमको ऐसी फीलिंग ना आवे, तो दादी ने हमको 5 रुपया दे दिया। मगर अभी यज्ञ का 5 रुपया अपन कैसे खर्चा करेंगे, और ना भी नहीं बोल सकते, दादी देती है तो ना भी नहीं बोल सकते, तो हमने लेके तो रख दिया और चलने लगे। उस समय मैं बीकॉम करता था, आर्य बोधार हाई स्कूल में माटुंगा में है, उधर बीकॉम करता था। तो उस समय तो बीकॉम के अंदर अभी तो डिवाइड हो गया, 5 सब्जेक्ट इधर हो गया, 5 सब्जेक्ट उधर हो गया, उस समय तो 10 सब्जेक्ट एक ही साथ थे, तभी 10 किताब और किताब भी बड़ी बड़ी 500-500 पेज की होती थी। तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ा, तो मैं हर जगह बाबा का फोटो रखता था, भाई बाबा का फोटो जहाँ रखा है वहाँ तक इस किताब में पढ़ा है, इस किताब में कृष्ण का फोटो रखा है वहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो दूसरी किताब में जहाँ लक्ष्मी नारायण का फोटो रखा है वहाँ तक पढ़ा है, ऐसे बाबा की याद में बना रहता था। तो बीकॉम तो पास कर दिया, पहले ट्रायल में निकल गया, तो फिर इन्होंने देखा कि ये पैसा देने से भी इसका कुछ होता नहीं है, तो फिर बाबा ने हमको बता दिया था कि अभी घर में जाएगा ना आज तुम्हारी धुलाई होने वाली है, वो भी बाबा ने बता दिया था। और पिताजी तो माताजी कुछ नहीं करते थे, बड़ा भाई थोड़ा एंटी तो नहीं कहेंगे मगर बड़ा भाई को थोड़ा था, तो बाबा ने तो हमको बताया था धुलाई होने वाली है, तो मैं तो प्रिपेयर था, तो कुछ नहीं, वो मारते थे तो हमको कुछ नहीं लगता था क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है, हमको मालूम है जो बात कल पहले हो गई है वही बात रिपीट हो रही है, तो अपना मेंटल प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा भी करके देखा तो भी कुछ हुआ नहीं। हमारा सेंटर पर जाना, कॉलेज अटेंड करना, घर में रहना, वो सब चलता रहा। फिर आकर उन्होंने कहा कि अभी ये इन बातों से भी इसका कुछ होता नहीं है, सेंटर तो ये छोड़ता नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अभी अगर अभी सेंटर पर गया तो घर में लौट के वापस नहीं आना, माना घर से बाहर निकल जाना। तो मैं दादी को बता देता था, दादी आज ऐसा घर वालों ने बोला है। बोलता अच्छा है, तुम सेंटर पर ही रह जाना, कोई बात नहीं। तो फिर सेंटर पर एक कुमार आता था, उसके साथ मेरा बंदोबस्त कर दिया और पर्स मंगा के हमको 100 रुपया भी दे दिया कि मार्केट में जाओ, तुमको जो ड्रेस चाहिए वो एक जोड़ी ड्रेस लेके आओ, बाकी टॉवेल वगैरह जो कुछ लगता है वो तो यज्ञ में सेंटर पर होता ही है, वो सब चीज दे दी हमको। तो अपनी गाड़ी तो चालू रही। तो फिर घर वालों ने देखा तो ये घर में नहीं आया है, अभी वो लोग बेचैन हो गए कि वो ये बोल देगा नहीं मैं सेंटर पर नहीं जाता हूँ, मुझे घर में रखो। तो अब ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि बाबा ही हमारा खुदा दोस्त था, तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर ड्रामा अनुसार मेरे से जो लौकिक बड़ा भाई है उसका शादी की तारीख आ गई, तो अभी वो लोग मुंझ गए कि परिवार वाले आएंगे, लौकिक संबंधी आएंगे और पूछेंगे कि आपका छोटा बच्चा किधर है, तो वो क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने फिर सेंटर पर फोन किया कि नितिन भाई को घर में भेजो। तो दादी ने कहा वो तो पहले दिन से भी आने को तैयार है, आपने निकाला इसलिए वो नहीं आ रहा है, बाकी वो तो पहले दिन से आने को तैयार है। बोलता नहीं नहीं घर में भेजो। बोलता है अभी मैं अभी भेजती हूँ। फिर दादी ने कहा घर में जाना मगर दरवाजे पर खड़ा रहना और बोलना मेरी 3 कंडीशन है, वो मंजूर है तो मैं आता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से ही वापस जाता हूँ। क्योंकि दादी तो अनुभवी थी ना, ब्रिजेंद्र दादी अनुभवी थी, जिसने यज्ञ को चलाया, सब फाउंडेशन थे ना, तो दादी तो बहुत दूरंदेशी थी। तो दादी ने बोला पहला कंडीशन डालना हमारे खाने पीने में कांदा लहसुन नहीं डालने का। उन्होंने कहा ठीक मंजूर है। फिर दूसरी कंडीशन डालना मैं सेंटर पर रोज जाऊंगा सुबह शाम, वो मंजूर है तो मैं आता हूँ। तो उन्होंने कहा ये भी मंजूर है। और तीसरा मैंने बोला मैं जब सर्विस करूंगा तो उसमें जो मुझे सैलरी मिलेगी उसका घर का जो हिस्सा होता है ना वो हम लोगों को देना चाहिए, जो भी कुमार भाई बहन है, कुमारी भाई बहन है और जो सर्विस करते हैं, तो घर में एक खर्चा होता है तो अपना जो हिस्से का खर्चा है वो देना चाहिए, तो वो मैं आपको मेरा घर का हिस्सा दे दूंगा, बाकी जो मेरी बचत होगी मैं सेंटर के लिए खरीद करूं या मेरा ड्रेस लेके आऊं उसका हिसाब आप नहीं पूछना, मैंने सेंटर पर कितना दिया, मेरा पर्सनल खर्चा कितना हुआ वो आप पूछना नहीं, बाकी मैं घर का हिस्सा मैं आपको दे देगा। तो उन्होंने कहा ये भी कंडीशन मंजूर है। तो वो दिन से आज दिन तक जो मैं बांदेला कुमार था वो अभी छुट्टी हो गई और यज्ञ में चलता रहा, दिन बीतते गए। फिर ये सब बीकॉम पास करने के बाद ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है ना, तो घर में तो बीकॉम पास कर लिया तो सर्विस होनी चाहिए, तो हमने पहली सर्विस लिया था मफतलाल ग्रुप में, जहाँ ये कपड़े बनते हैं ना, कपड़े की मैं कॉस्ट निकालता था कि अपने को कपड़े की इतनी कॉस्ट मिल पड़ती है और इसमें इतना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट प्राइस ये होना चाहिए। मगर वो मफतलाल के ग्रुप में मैंने देखा ये तो सैटरडे भी चालू रहता है, जब छुट्टी के दिन संडे भी चालू रहता है, और उधर कार्ड पंचिंग था, अगर ऑफिस में जाओ तो कार्ड पंच करो, ऑफिस से बाहर निकलो तो कार्ड पंच करो। मैं कहा ये तो बंधन वाला काम है, मैं कहा ये नौकरी ठीक नहीं है, अपने को तो यज्ञ सेवा करनी है, तो मैं कहा ये नौकरी अपन छोड़ देते। तो फिर हमने बैंक ज्वाइन किया, सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया। तो सेंट्रल बैंक ज्वाइन करने के बाद देखा वहां अगर ऑफिसर बनता है तो 3 साल गांव में जाना पड़ता है। मैं कहा ये भी प्रॉब्लम वाला काम है। तो फिर मैंने बाबा को पूछा और बाबा के कमरे में जाके बाबा को मैंने कंडीशन डाला कि हमको ऐसी नौकरी दिलाओ जहां अपने सेंटर का काम हमारे पास आवे सेंटर वाले और बोले मुझे ये काम करके दो। हमारा एक ही बॉस होना चाहिए, ज्यादा हमको असिस्टेंट नहीं चाहिए, और मैं जहां जब भी आऊं ऐसी नौकरी होनी चाहिए। बाबा को ये सब मैंने कंडीशन डाल दिया, योग में डाल दिया। और बाबा को एप्लीकेशन ने भी बाबा ने कहा इलेक्ट्रिक कंपनी में एप्लीकेशन करो। तो बॉम्बे में 2 कंपनी है, एक BSTL है और उस समय थी BSES बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो हमने वहां एप्लीकेशन कर दिया और सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी है मैं उसमें है ना सांताकुस का सेंटर, बिलेपार्ला का सेंटर, गोरेगांव का सेंटर, जोगेश्वरी का सेंटर, अंधेरी का, कांदीवली का, बोरीवली के, सब सेंटर के कनेक्शन में ड्रामानुसार आना शुरू हो गया। क्योंकि सेंटर में जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, समझो मेला किया, तो फिर एक्स्ट्रा मीटर लेना पड़ता है ना कंपनी से। ग्राउंड में अगर फंक्शन है तो एक्स्ट्रा मीटर लेना पड़ता है, तो वो भी था। तो मैंने कहा ये इधर अपना ठीक है, और अब हम और हमारा बॉस और बाजू में हमारा एक असिस्टेंट, बस हम 3 लोग थे। मैं कहा ये जॉब अच्छा है। तो एक बार क्या भाईंदर के अंदर मेला रखा था और इन्होंने उनको मीटर चाहिए था, एक्स्ट्रा बड़ा मीटर चाहिए था। तो भाईंदर का जो सब स्टेशन है उन्होंने बोला हमारे पास तो मीटर नहीं है, बड़ा मीटर आपको तो 20 किलोवाट का मीटर चाहिए, हमारे पास नहीं है, वो तो हेड ऑफिस में ही मिलता है। और हेड ऑफिस में उस समय सैटरडे था तो हेड ऑफिस बंद होती, मगर इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट चालू रहता है, क्योंकि मीटर का काम होता है तो टेम्परेरी मीटर लगाने वाले का जॉब चालू होता है। तो वहां से फिर फोन आया वहां की बहन का कि नितिन भाई हमको एक्स्ट्रा मीटर चाहिए, यहाँ मीटर है नहीं, और बोलते हैं सांताकुस में ही मिलेगा। तो मैंने कहा वो भाई को भेज दो, कर लेंगे। वो डिपार्टमेंट में गया तो डिपार्टमेंट वाला बोला इसमें बड़े बॉस की सही चाहिए, उसके बगैर हम मीटर इशू नहीं करते। तो मैं उसके कैबिन में जाके बोला ऐसा मीटर चाहिए, तो उसने हमको देखा तो हमको तो वो पहचानता था, क्योंकि अकाउंट्स में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट मैं ही बनाता था कि ये मास में कितना प्रॉफिट हुआ, अगले मास में कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मीटिंग होती थी उसका रिपोर्ट मैं ही बनाता था, तो इसको मालूम है। तो उसने हमको देख के पूरा सही मार के दिया कि दे दो इसको। तो मैं सही मार के उधर गया, बोलता अभी पहुंचेगा कैसा, भाईंदर कैसा लेके जाएगा तुम। उतने में एक मोटरसाइकिल वाला इंस्पेक्टर निकला, मैंने कहा ये भाईंदर में लेके जाने का है, बोलता हाँ मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, मेरा दूसरा काम है, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। तो मैं कहा ये भाई को बिठा दो और लेके जाओ। तो एक्स्ट्रा जो मीटर 20 किलोमीटर वाला था वो लेके गया। माना असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं अगर आप बाबा से बातचीत करते रहते हैं, बाबा को पूछते रहते हैं, तो कोई भी कार्य हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कार्य पॉसिबल होता है। तो ऐसे उन दिनों में फिर ऑफिस में करते करते उन दिनों में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आ गए और ऑफिस में डिक्लेयर कर दिया कि सबको कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने की है, और ट्रेनिंग का टाइम रहेगा ऑफिस छूटने के बाद 5:30 से 6:30। तो हमने अपने बॉस को जाके बताया कि 5:30 से 6:30 मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ। बोलता है वो मैं नहीं जानता, ऑफिस का ऑर्डर है, आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने कहा आप मुझे वो किताब दे दो कंप्यूटर का, वो मैं पढ़ लूंगा और मैं सीख लूंगा। बोलता है वो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं ट्रेनिंग पूरा होने के बाद अपना डिपार्टमेंट के काम कंप्यूटर में जाना चाहिए। मैं कहा मेरे उसकी मेरी गारंटी। तो उसने हमको किताब दे दिया, किताब पढ़ के हमने कंप्यूटर सीख दिया। तो ऑफिस का जो भी काम था मैंने उसमें लोड कर दिया, उसमें बना दिया। फिर एक बारी मधुबन आने का था तो बॉस को जाके बताया कि अभी बाबा की सीजन है, मधुबन जाने का है। बोलता है भले जाओ, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम तो वैसा भी छुट्टी नहीं लेता है। और मैं जिस जॉब पर था, मेरे आगे जो काम करता था ना, वो सारा दिन काम करने के बाद ओवर टाइम 3 घंटा करता था, और उतना होने के बाद भी काम पेंडिंग रहता था। और जब मुझे वो जॉब पर बिठाया तो मैं 3 घंटा फ्री बैठता था, क्योंकि अपनी जो एकाग्रता होती है, काम करने की जो एक्यूरेसी होती है, सब परफेक्ट होता है। और अपन कोई आपस में बात नहीं करते, ना चाय पीने के लिए उठते हैं, ना कोई गप्पा सप्पा करते हैं। तो मैं ये सब करके उसने तो मुझे देख लिया था, तो ये काम तो परफेक्ट करता है, ना किसके साथ बात करता है, ना चाय के लिए बाहर जाता है, कुछ भी करता नहीं है। तो उसने कहा आप जाओ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना करना, रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगती है ना, तो बॉम्बे में जितने भी रोड पर स्ट्रीट लाइट लगती है उसका बिल मैं बनाता था। तो उसने कहा दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो रिपोर्ट मैं बना लूंगा, तुम सिर्फ ये स्ट्रीट लाइट जो पोल है उसका बिल बनाने का है। वो 50-60 हजार स्ट्रीट लाइट पोल थे, उसका बिल तुम मुझे बना के दे दो, जब डेट आएंगे ना तो मैं उसको रिलीज कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट जो है ना, 8:30 बजे शुरू हो जाता है, और हम लोगों का डिपार्टमेंट 10 बजे शुरू होता है। तो कैश डिपार्टमेंट का एक भाई 8:30 बजे आके वो अपना काम कंप्यूटर में करता है। उस दिन वो भाई गया था 8:30 बजे और उसने स्विच ऑन किया तो कंप्यूटर चला नहीं। अभी वो बात तो मुझे मालूम नहीं थी कि कंप्यूटर नहीं चलता है। तो मैं 10 बजे आया और पहले तो अभी तो हर एक के टेबल पर लैपटॉप और कंप्यूटर आ गए। उस जमाने में ऐसा नहीं था, कंप्यूटर का एक रूम बना रहता था एसी वाला, और वहां सब कंप्यूटर पड़े रहते थे। तो मैं गया और मैंने स्विच ऑन किया, कंप्यूटर चालू हो गया। मुझे जो बिल बनाने थे वो मैंने बिल भी बना दिया, और फिर कंप्यूटर बंद करके मैं वापस आ गया। तो वो कैश डिपार्टमेंट ने भाई ने देखा कि मैंने अपना काम कंप्यूटर से निकाल के मैं बाहर जा रहा हूँ। बोलता है सुबह में 8:30 बजे आया ना तो ये कंप्यूटर चला ही नहीं है, तुम्हारा कैसा चला? मैं कहा मुझे मालूम ही नहीं है कि बंद है। तो फिर कहा अभी मेरे लिए चालू करो। तो फिर मैं गया, चालू ही नहीं हो गए। वो देखो तुमने अपना काम निकाला, अभी तुम ही चालू करके नहीं देते। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने स्विच ऑन कर रहा हूँ, सब कंप्यूटर का भी स्विच ऑन करता हूँ, सब आपके सामने ही करता हूँ। बोलता है नहीं तुम कुछ चालाकी करता है। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं चलता है तो अभी मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बिल चेक किया, अभी एक बिल में आई मिस्टेक। मैं कहा वापस उधर जाना पड़ेगा कंप्यूटर रूम में। मैंने बाबा को बोल के गया कंप्यूटर रूम में, कंप्यूटर को हाथ लगाया चालू हो गया। बिल करेक्ट भी किया और वापस एक के बाहर आया तो उसने वापस देखा। क्या ये तो प्रॉब्लम है? मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपने आप सब होता है। तो वो माने नहीं। मेरा बताने का मतलब ये है कि प्रकृति के जितने भी साधन है या जितने भी लगे हुए साधन है, जड़ चेतन, उसके साथ भी अगर आप प्रेम प्यार से बात करेंगे तो आप सहज ही उससे काम ले सकते हैं, भले वो बिगड़ी हुई चीज हो। क्योंकि मेरा दूसरा भी एक नेचर था, सेंटर की गाड़ी मैं चलाता हूँ, ड्राइविंग मैं ही करता हूँ। तो कहाँ भी जाना होता है, समझो अभी संतोष दीदी बोलेंगे सायन से हमको पूना जाना है, वो पहले दिन प्रोग्राम मिल जाता है। तो अमृत वेले जब उठता हूँ तो बॉम्बे से लेके पूना का जो रास्ता है हाईवे, उसको मैं योगदान देता हूं। अभी योगदान के सिस्टम तो माना आप लोग अभी से सीख रहे हैं ना, मनसा सेवा करो, ये सब करो। अगर मैं तो उस समय से ही करता था, बॉम्बे से पूना का जो रास्ता है, या बॉम्बे से नागपुर का है, बॉम्बे से जलगांव है, बॉम्बे से बुरहानपुर है, बॉम्बे से हैदराबाद है, सोलापुर है, सब जगह ड्राइविंग करके संतोष दीदी को लेके गया हूं। तो जो रास्ते से जाना होता है, उस रास्ते को अमृत वेले योग में बैठ के उस रास्ते को पूरा योगदान दे देते हैं, ताकि वो रास्ते में कहां भी अपने को विघन नहीं आवे, ट्रैफिक जाम नहीं आवे, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होवे। वो सब लेता, गाड़ी निकलने के एक दिन पहले गाड़ी का ट्रायल भी लेता हूं, और गाड़ी को बोलता हूं कल अपने को नासिक जाने है, कल अपने को बुरहानपुर जाने का है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना है। मैंने प्रैक्टिकल ये बात किया हुआ है, और आपको कुछ प्रॉब्लम है मुझे अभी बता दो। तो ट्रायल रन के अंदर हमारे इधर एक महेश्वरी उद्यान आता है, साइंस के आगे का स्टेशन महेश्वरी उद्यान है, वहां गाड़ी बंद पड़ गई। तो हमने पूछा अभी गाड़ी बंद पड़ गई तो क्या प्रॉब्लम है, तो हमने सामने बैटरी का एक दुकान था, तो हमने जाके पूछा, तो बोलता है उसने चेक किया, साहब आपकी बैटरी डाउन हो गई है। तो गाड़ी भी वो बैटरी की दुकान के पास खड़ी रही है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैंने किया हुआ है। तो उसने कहा आप ऐसा करो, मैं अभी दूसरी गाड़ी बैटरी दे देता हूं, मैं रिचार्ज को रख देता हूं, कल आप पुनः से वापस आएंगे तो अपन एक्सचेंज कर डालेंगे। मैंने ठीक है, वो बैटरी डाल दिया, हम टूर मार के आ गए और बैटरी फिर बदली कर दिया। माने ये जितने भी स्थूल साधन है, आप इनसे बात करो तो आपको वो क्या प्रॉब्लम है, कैसा सहयोग देना है, ये मैंने निजी अनुभव किया है। और एक बात ऐसी थी, ऑफिस का जो टेबल होता है ना, उसके ऊपर कांच होता है ना, अपन कांच रखते हैं, नीचे लक्ष्मी नारायण का फोटो रखते वगैरह करते, तो वो कांच पर रख के मैं सामान निकालता था। मैंने अपने को जो सेंटर का जो लिटरेचर वगैरह होता है तो ऊपर होता है, तो कंपलसरी मुझे टेबल पर चढ़ना पड़ता है। तो एक भाई ने देख के वो भी चढ़ा और कांच गया, टूट गया। तो बहनों ने बोला देखो तुम चढ़ता है तो आपने, आपसे तो कांच नहीं टूटा, मगर तुमसे देख के उसने ऐसा किया तो देखो यज्ञ का नुकसान हो गया। हम जब चढ़ता था वो कांच नहीं टूटता था, और दूसरा भाई चढ़ा उस समय वो कांच टूट गया। तो फिर बोला कि ऐसा मत करो, तुम वो काम करो जो सब कर सकते हैं। तो प्रकृति से भी आप जो भी साधन है उससे भी आप सहयोग ले सकते हैं और बता भी सकते हैं, और कुछ सब कुछ हो सकता है। गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं होगा, मेरा इतना गारंटी है। अगर गाड़ी को योगदान दिया, गाड़ी से बात किया, रास्ते को हाईवे किया, तो भी सब पॉसिबल है। और एक दिन की बात थी, क्योंकि जो भी गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना, उसको एक संकल्प चलता है। बहनें तो प्रोग्राम दे देती है कि 10:15 को अपने को जाना है, और फिर क्या होता है, बहनें 10:15 को तो आती नहीं है, वो 10:20 को आएगी, 10:25 को आएगी, 10:30 को आएगी, ऐसे अपने टाइम पर आती है। तो जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं ना, उसका संकल्प चलता है, देखो 10:15 हो गया, अभी तक बेंजी नहीं आई, अभी इतना टाइम हुआ, अभी तक बेंजी नहीं आई। मैं ऐसा व्रत संकल्प चलाता नहीं हूं। एक बार हम लोगों को जाने था नासिक, और हमको प्रोग्राम मिला था 6:00 निकलेंगे। तो ठीक है, हमने तो 6:00 गाड़ी गेट पर लगा दिया, और संतोष दीदी आई 6:15 को, फिर 6:15 के बाद चले। हमने कुछ भी व्यर्थ संकल्प नहीं किया था, भाई 6:00 का प्रोग्राम दिया, 6:15 आए, क्योंकि भाइयों का ज्यादा टाइम का रहता है, बहनों को ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, वो तो अपना घर का परिवार है। 6:20 को गए, 6:15 को गए, क्या फर्क पड़ता है, जाना तो सेंटर पर ही है ना, कोई कहां जाना नहीं है। तो बहनें निश्चिंत होती है, मगर जो चलाने वाला ड्राइवर होता है या भाई होता है, उसका जरा संकल्प चलता है। तो हम लोग 15 मिनट लेट निकले, और वहां रोड पर जाने के मालूम पड़ा, नासिक जाते हैं तो बीच में घोटी आता है, गोटी पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट 15 मिनट पहले हुआ था। जब ट्रैफिक जाम हो गया तो हमने इंक्वायरी किया, उत्तर साहब 15 मिनट पहले अभी एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा ट्रक का एक्सीडेंट गाड़ी के साथ हो गया है, बड़ा एक्सीडेंट है, इसलिए आप गोटी गांव में से आप गाड़ी लेके नासिक निकल जाओ। तो हमने सोचा अगर संतोष बहन 6 बजे आ जाती थी तो क्या मालूम उस मोमेंट पर 6 बजे हम भी वहां हो सकते थे, क्योंकि 15 मिनट का ही गैप था और संतोष दीदी 15 मिनट के बाद ही आई। मैं कहा ऐसा हो सकता था, उस मोमेंट पे हम भी हो सकते थे। तो ड्रामा की हर बात में कल्याण है, ये आप निश्चित समझो। कभी भी कुछ लेट होता है, आगे पीछे होता है, कुछ भी संकल्प नहीं करो। कईयों को ऐसा आता है वीआईपी का 3 बजे का टाइम दिया है, ये बहनें अभी तक आती नहीं है, वो 3 बजे तो एक्यूरेट अपना अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। ड्रामा हमारे फेवर में है, हो सकता है वो वीआईपी 3 बजे के बाद ही आने वाला होगा, ऐसे बहुत सारे अनुभव किए हुए हैं। इसलिए कहने का भावार्थ यही है, कभी भी टाइम आगे पीछे होता है, व्यर्थ संकल्प मत चलाओ, बाबा की याद में रहो, कार्य सफल हो जाएगा। तो ये अपना निजी अनुभव है, अभी तक भी वो प्रैक्टिकल में है, इसलिए ऐसा कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने का। तो ऐसे करके दिन तो बीतते गए सेंटर पर भी, फिर लौकिक भाई सब अलग हो गए, फिर लौकिक माँ और हम, पिताजी तो जब मैं जॉब में था तभी चले गए थे, तो पिताजी का तो अभी माँ और हम ही थे, बड़े भाई भी गए थे, सब कहते थे हम माँ को लेके जाते अपने घर में। तो लौकिक माँ बोलती थी नहीं, मुझे अगर रहना है तो मैं इसके साथ ही रहूंगी, मुझे आप लोगों के घर में नहीं आना है, ये मेरा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता है, ध्यान तो मैं कुछ करता नहीं था, बाबा ही ध्यान रखता था, ये मेरा ध्यान अच्छी तरह से रखता है, इसलिए मैं उसके साथ रहे। कहते थे नहीं 6 मास मेरे पास रहो फिर उधर रहना, बोलते नहीं मैं किधर भी नहीं रहेगी, मैं इसके साथ ही रहने वाली है। और लौकिक माँ जब बीमार पड़ी तो फिर हमने सेंटर पर तो जाना है, यज्ञ सेवा भी करनी है, तो हमने कहा अभी क्या करें। जब माँ हेल्दी थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो अपना काम अपने आप करती थी, जब बीमार पड़ी तो मैंने कहा अभी क्या करेंगे, वो तो माता जी है और मैं तो कुमार हूं। तो फिर हमने रास्ता निकाला, मैं कहा अभी एक सर्वेंट रख दे, आया रख दे, तो हमने 3 आया रख दिया, क्योंकि 24 घंटा होता है ना, 8-8 घंटे की, मैं कहा मैं तो आगे पीछे रहेगा तो इसको कौन संभाल करेगा। और आया होने के साथ उसके साथ मिल गई थी, बहनों को अगर कोई बात करने को मिल जाता है तो इनका तो दिन कट जाता है। तो फिर हमने आया रख दिया, सब काम चलने लगा। फिर एक बारी वो बीमार पड़ गई और उस समय मैं सेंटर पर था, तो हमारे बाजू में ही डॉक्टर है, तो वो आया ने जाके डॉक्टर को बताया कि ये इनकी माँ बीमार पड़ गई है। वो आया चेक किया, उसने कहा इसको तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर ने ही मुझे फोन किया कि आपकी माँ बीमार पड़ गई है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ, मेरे नाम पर डिपॉजिट वगैरह सब मैं ही भरेगा, तुम अपना काम करके आ जाना, मैं आपको बेड नंबर वगैरह सब बता देता है। वो डॉक्टर ने ही एडमिट किया, डिपॉजिट वगैरह जो कुछ करना था उसने ही सब किया। जब मैं गया, उसको मालूम था मैं ब्रह्म कुमारी में बहुत एकदम सर्विस करता हूँ, तो उसको मालूम था और ब्रह्म कुमारी के लिए उसको रिस्पेक्ट भी था, तो उसने सब प्रोसीजर कर भी दिया और वो एडमिट भी हो गई। उसके बाद अटेंड भी करने, मैंने अटेंड करना शुरू कर दिया, मगर अपना नियम था सेंटर पर 6 बजे जाने का। तो मैं रात को, मैं भाइयों को मैंने बता दिया था कि दिन में आप ध्यान रखो, रात को लौकिक माँ का ध्यान मैं रखूंगा हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने सब ड्रेस बेड लेके हॉस्पिटल में ही रख दिया था, वहां स्नान करके मैं सेंटर पर जाता था। तो लौकिक भाई बराबर 5:45 बजे आ जाता था, वो हमको रिलीव करता था, और मैं सिर्फ सेंटर पर जाता था, दिन में आता था रात को जाता था, ऐसा चलना शुरू कर दिया। तो लौकिक परिवार वाले जो कुछ भी है, आपको सहयोग देवे या न देवे, आप उनको योगदान जरूर दो। अगर सेंटर पर भी आते हैं ना तो भी योगदान दो, नहीं आते हैं तो भी योगदान दो, क्योंकि योग से आप वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। अभी भी परिवार में ऐसा है, किसी भी लौकिक भाई को मैंने फोन किया कि ये काम है, वो ऑन द स्पॉट अपना काम हो जाता है, उसमें वो आनाकानी करते ही नहीं है। हमने फोन किया, मैं कहा आपको इतना जरूरत है, तो इमीडिएट बंद कर देते हैं। इसलिए लौकिक में ज्ञान में चले या न चले, सबको रोज योगदान देने का, तो योगदान देने से सहयोगी बन जाते हैं। ऑफिस में भी हमारा नियम था, 10 बजे ऑफिस खुलती थी, 10 से 10:15 अपने जो स्टाफ है, उस समय तो 500 का स्टाफ था, हम तो अकाउंट्स में था, मगर अकाउंट के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट तो होते हैं ना, तो 500 का स्टाफ था, तो मैं 10 से 10:15 उन दिनों में सबको 500 का योगदान देता था, और योगदान देने से हमारे सहयोगी बन जाते थे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट से फिगर आनी चाहिए ना, मीटर कितने लगे, कंज्यूमर कितना हुआ, बिल पेमेंट कितना हुआ, टाटा का बिल कितने का है, वो सब रिपोर्ट में सब बनाना पड़ता है, इस बार इस महीने में कितना प्रॉफिट बनेगा, वो सब फिगर देने पड़ते हैं। तो दूसरे डिपार्टमेंट के जो हमको फिगर देते हैं, वो फिगर कैसा बनाता है ना, वो भी मैं सीख के आया था। जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट का रिपोर्ट बनाने आता है, वो लोग वो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उनका भी मैं रिपोर्ट सीख लिया था, हर एक डिपार्टमेंट का, ताकि हमको जब रिपोर्ट बनाना होवे और उस दिन वो अगर भाई नहीं आया होवे तो क्या करेंगे। तो उनके डिपार्टमेंट में जाकर इनको ही रिपोर्ट कौन सा बनाना है वो मैं बना के अपना फिगर लेके आता था, और अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बना देता था। तो जब भी हमारा रिपोर्ट जाता था तो कभी भी कोई बात पेंडिंग नहीं रहती थी, हर चीज में फिगर मिल जाते थे, और आगे वाला जो रिपोर्ट बताता था वो लिखता था वो डिपार्टमेंट में हमको रिपोर्ट भेजा नहीं, ऐसा वो रिमार्क मारता था, भाई मीटर डिपार्टमेंट से नए मीटर कितने लगे इसका रिपोर्ट आया नहीं है, इसलिए ये फिगर ब्लैंक है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में कभी भी कोई रिपोर्ट ब्लैंक नहीं रखा, उस डिपार्टमेंट में जाके उनका वर्किंग देके, उनका रजिस्टर देके, वो जहां से फिगर निकालते हैं वो फिगर निकाल के मैं अपने रिपोर्ट में डाल देता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नोट तो करके दिया था कि जब से ये आया है हर एक फिगर हमको मिलता है, उसमें कहां भी रिपोर्ट नहीं होता है कि रिपोर्ट नॉट रिसीव, ऐसा कहां भी रिमार्क नहीं होता है। तो उनको ध्यान में तो आ गया था कि ये एक्यूरेट काम करता है। इसलिए जब रिटायर होने का समय आया तब सभी ने A to Z सभी ने सैंक्शन किया कि इसको कंसल्टेंट के तरह रखा जाए और ऑफिस का काम चालू रहना चाहिए। मगर उन दिनों में अनिल अंबानी हमारा बॉस अब फाइनल डिसीजन लेने वाला था, उसने कहा नहीं ऐसा सिस्टम नहीं डालने का, नहीं तो दूसरा कोई रिटायर हो जाएगा तो वो भी कहेंगे आपने इसको कंसल्टेंट रखा है तो मुझे भी रखो। इसलिए फिर अनिल अंबानी ने क्रॉस मारा, बाकी फाइनेंशियल डायरेक्टर था उसने तो रिमार्क मारकर दे दिया था इसको जरूर ड्यूटी पर रखो, ये बहुत नेसेसरी आदमी है। मगर फिर अनिल अंबानी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अपने को इसको रिटायर करना ही पड़ेगा। और जिस दिन रिटायर हो गया उस दिन बॉस जो आया अभी बोला अभी तो तुम रिटायर हो गए इसलिए मैं तुमको अभी सेकंड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्टेज बहुत ऊंची है और तुम बहुत बड़ा आदमी है मुझे भी मालूम है, मगर तुम मेरे अंडर था तो मैं बॉस की तरह रहा, मगर आज तुम रिटायर हो गए अभी तुम कंपनी का स्टाफ नहीं है, इसलिए जाते समय मैं तुमको नमस्कार करता हूं। और उसने फिर पांव भी पढ़ा, मैं आपका पांव पढ़ता हूं, आप इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में किधर भी कुछ भी नहीं करता था, सब अपना काम में लगा रहता था, आलतू फालतू बात अपन करते ही नहीं थे, ये ऑफिस में जाके जो पॉलिटिक्स बात करते हैं, दूसरी दूसरी बाहर के न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ऐसा मैं कभी भी नहीं करता था। तो उन्होंने ये देखा हुआ था, और फिर उसने अपनी गाड़ी दिया, बोलता है जिसको सेंटर पर छोड़ के आओ, और उसकी गाड़ी में मैं फिर सेंटर पर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव अलग अलग प्रकार के हैं। अभी एक लास्ट अनुभव आपको सुना देता है, क्योंकि घड़ी तो अपना काम कर रही है। लास्ट अनुभव में ऐसा था, लौकिक बाग जब बीमार पड़ी तो हमने बाबा को बांध के रखा था, बाबा को बोल दिया था कि जब ये शरीर छोड़े उस समय मैं हाजिर होना चाहिए, ये कंडीशन मैंने बाबा को डाल दिया था। तो वैसे लौकिक माँ तो 2-3 बरस बीमारी चली, हमने उसके लिए सर्वेंट भी रखे थे, नर्स भी रखा था, सब कुछ प्रबंध किया था। फिर फाइनल हो गया तो अभी डॉक्टरों ने बोला कि अभी ये रिकवरी नहीं होने वाली है, आप घर में लेके जाओ। तो फिर हम घर में लेके आए, नर्स को भी घर में रखा था, जो कुछ करना है लौकिक माँ के लिए सब हमने प्रबंध कर दिया था। और जिस दिन लौकिक माँ को शरीर छोड़ने का था उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, तो मैं संतो दीदी को लेके पनवेल गया था, माना बॉम्बे से 45 किलोमीटर दूर संतो दीदी को वहां राखी के लिए लेके गया था। और वहां जाने के बाद आया का फोन आया कि लौकिक माँ एकदम काली पड़ गई है, अभी वो जाएगी। तो मैंने कहा उसके कान में बोलो मैं आ रहा हूं। तो उसने उसके कान में जाके बोला कि नितिन भाई आ रहा है, तो वापस वो अलर्ट हो गई, माना नॉर्मल हो गई। वहां से मुझे जो मैसेज आया तो संतो दीदी को बोला मैं अभी जा रहा हूं कि लौकिक माँ का ऐसा है, बोलता है जाओ। वहां से मैं ट्रेन में आया, वहां कोलीवाड़ा एक स्टेशन है, वहां मैंने वापस आया को फोन किया, अभी तबीयत कैसी है, बोलते अभी तबीयत अच्छी है। तो मैंने कहा अभी आप बोलना नहीं, मैं 15-20 मिनट के बाद आता हूँ, सेंटर के और भी 2-3 काम है, वो काम करके मैं आता हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर लौकिक घर में पहुंच गया, फिर लौकिक माँ ने पूछा खाना खाया क्या, ये माताओं की विशेषता है, माताओं का स्नेह होता है, वो बच्चों को खाने के बिगैर नहीं भेजेगी। तो हमको बोला खाना खाया क्या, मैं कहा नहीं खाया, बोलता जाओ सेंटर पर खाना खा के आओ। क्योंकि मैं जब से लौकिक माँ बीमार थी ना तब से मैं सेंटर पर ही सुबह शाम खाना खाता था, तो बोलता नहीं खाना खा के आओ। मैं कहा टाइम लग जाएगा, बोलता हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि सेंटर जाएगा खाना खाएगा, मैं कहा आने में 1.5 घंटा लग जाएगा, बोलता हाँ कोई बात नहीं। मैंने पूछा आपने खाया क्या, बोलते तुमने नहीं खाया तो मैं कैसा खाएंगे। तो मैंने कहा तुम भी खा लो और मैं सेंटर पर जाके खाना खा के आता हूँ। तो 1.5 घंटा तो हमको जाने में आने में सब मिला के 1.5 घंटा लगता है। तो फिर मैं 1.5 घंटे के बाद आया, तो आया ने बोला आया है ना सुबह शाम का खाना बना देती थी, दिन का भी खाना बनाती थी, रात का भी खाना बना, बोलता है जितना भी खाना था सब खाना खा लिया उसने, A to Z सब खाना खा लिया। और फिर मैंने कान में जाके उसको बोला कि मैं आ गया हूं, जैसा मैं आ गया हूं बोला वो चली गई। तो बाबा ने मेरी जो कंडीशन थी कि ये जब शरीर छोड़े तो मैं होना चाहिए, वो बाबा ने वो कंडीशन निभाई। फिर तो लौकिक भाइयों को फोन किया, एक बड़ौदा में रहता था, तो बोलता है अभी मैं प्लेन करके कल सुबह आता हूँ। तो कोल्ड स्टोरेज में रखना था वो सब कर दिया, जब टाइम हुआ तो मैं कोल्ड स्टोरेज से लेके आया रखा। जो बड़ौदा गया था ना वो भाई गेट पे आके खड़ा रह गया और हमको पूछा जब शरीर छोड़ा तो तुम सेंटर पर था या इधर था। पहला ही प्रश्न उसका ये था। तो आया ने बोला नहीं इधर साहब इधर ही थे। उसके बाद वो अंदर आया। तो बाबा को जो कंडीशन डाला था ना तो बाबा ने वो कंडीशन निभाई। तो इसलिए ऐसा कुछ भी होवे, बाबा कहते हैं ना बच्चे मुझे यूज नहीं करते, मैं बाबा को तो फुल यूज करता हूं हर काम के लिए। कुछ प्रॉब्लम होवे कुछ भी होवे बाबा को मैं पूछ लेता हूं। इसलिए बाबा से हम लोग आपस में बात करते हैं वो तो ठीक है, मगर जितना हो सके बाबा से बातें करो, आपको कोई विघ्न नहीं आएगा, आपके सब सहयोगी बन जाएंगे। उसके बाद तो सब विधि हो गई। और अभी भी अगर लौकिक भाई को फोन किया तो उसको बोलेगा मैं ऐसा ऐसा है, वो बैंक अकाउंट में इमीडिएट डाल देगा, मैं जितनी अमाउंट बोलेगा उतनी अमाउंट वो बैंक अकाउंट में डाल देता है। वो रहता तो बड़ौदा है। और दूसरा भाई भी जिसको भी फोन किया ऐसा अगर है, क्योंकि जहां शिवाजी पार्क जहां रहता है ना, अभी आजकल तो मकान सब रिपेयरिंग हो रहे हैं ना, तो अपने पास तो इतना रिपेयरिंग का होता नहीं है, तो भाइयों को बोल देता है तो आ जाता है। तो कहने का बावर इतना ही है, बाबा को खुदा दोस्त बनाओ, बाबा को जो काम बोलो वो करो, और सारा दिन योगदान देते रहो। यहाँ भी शांतिवन में आते हैं हम, आबू रोड से अपने जहाँ जाते हैं वो ट्रेन के रास्ते को भी योगदान दे दो, तो आपकी ट्रेन भी निर्विघ्न जाएगी, बिफोर टाइम जाएगी, कहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये निजी अनुभव वर्तमान जीवन का है, बाकी तो बातें तो बहुत सारी है, वो सुना सकते हैं, और किसको कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं है तो साकार बाबा की एक बात सुना देता हूं। जब पहले वाली मधुबन में आया तो साकार बाबा, अभी तो बाप दादा ही है, बाबा है मैग्नेट, मैग्नेट है। जैसे बाबा तो अपने कमरे में जो गद्दी है ना, ट्रांसलेट के बाजू में गद्दी है, बाबा उस पर बैठे रहते थे। बाबा अपने खटिया पर रात को ही जाता था। हम तो दिन में भी अपनी खटिया पर जाते हैं ना, बाबा तो अपनी खटिया पर रात को ही जाता था। दिन में बाबा कुटिया में बैठता था, जहां वो पत्र व्यवहार होता है ना, बाबा दिन में आराम वहां करते थे। तो जैसा जहां भाइयों बहनों का बहने जहां चप्पल निकलती है ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था, जहां बहने निकलती है वहां बाबा का बाथरूम था, और जहां भाई लोग चप्पल निकलते हैं वहां बाबा का किचन था। तो हम दरवाजे पर फर्स्ट टाइम गया, और जैसा बाबा को देखा बाबा को चिपक गया, क्योंकि बाबा तो मैग्नेट है, इंश्योरेंस में अपन तो मैग्नेट जो होता है ना वो खींच लेता है। तो बाबा ने तो 15 मिनट हो गया, बाबा ने कहा बच्चे 15 मिनट हो गया, उठो उठो, हमको तो मालूम ही नहीं 15 मिनट कैसा हो गया। फिर बाबा ने पीछे थप्पा मारा, बच्चे उठो 15 मिनट हो गया। तो बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट था तो मालूम ही नहीं पड़ता था। फिर तो बाबा को मिल दिया। शाम को बाबा जो हिस्ट्री हॉल है ना उस पर टेरेस है, वहां जो भी दिन में पार्टी आती है उसके साथ बाबा पिकनिक करते थे। तो सब बैठ गए, बाबा ने ऐसे दृष्टि घुमाई। अभी तो हम तो आप लोगों को टीचर और दीदी वगैरह बोलते हैं ना, उन दिनों में हम ब्राह्मणी बोलते थे। तो बाबा ने ब्राह्मणी को पूछा, एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो बहन ने बताया, मेरे लिए ही बताया कि वो उसका नाक में से खून बहता है, वो पहाड़ी पर जाते हैं ना तो कभी नाक में से खून बहता है। तो मैंने बोला वो नाक में से खून बहता है तो इसलिए वो आराम कर रहा है। बोलता नहीं नहीं, वो बच्चे को अभी लेके आओ इधर। तो वो तो अभी तो हमारा सिस्टम अलग हो गया है, अभी तो हम बेल मारते हैं, फिर दीदी के पास जाते हैं, बहनों को पूछते हैं ना भाई दीदी को मिलना है, और फिर अंदर जाते हैं। उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहन सीधे मेरे कमरे में आ गई और बोलते हैं उठो, बाबा आपको बुला रहा है। तो फिर हम बाबा के पास गए, बाबा ने दृष्टि दिया, फिर बोला बच्चा क्यों नहीं आया था। मैं कहा नहीं, नाक में से खून बहता था ना। अच्छा अच्छा, बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है, बाबा तुमको 1000 गुना करके देगा। अभी वो बाबा ने जो पालना, फिर बाबा ने हमको क्या बोला, कल से योग पूरा होने के बाद मेरे पास आना। और संतरी दादी जो है ना, संतरी दादी जो पहली दादी जिसके तन में अव्यक्त बाप दादा फर्स्ट टाइम आए थे, वो संतरी दादी को प्रोग्राम दे दिया कि घी का कटोरा, उसमें बादाम, पिस्ता, खजूर, माना जो कुछ भी जितने भी सूखे मेवे हैं डाल के इसका एक कटोरा बनाना। बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है तो जब तक बच्चा इधर रहेगा तब तक रोज घी का कटोरा पी के जाएगा। अभी तक भी वो एनर्जी काम कर रही है। अभी भी अपने आयु से, मेरी आयु लौकिक में 78 है, अभी भी मैं 16 घंटा काम करता हूँ क्योंकि अभी भी वो एनर्जी चल रही है। तो बाबा के कमरे में जाने का था ना 4:45 के बाद, तो हम ईशुबेन की ऑफिस है, फिर ईशुबेन का कमरा है, फिर दादी का कमरा है, हम 4:45 बजे भी ऐसे कमरे में निर्संकल्प होके जाते थे। कोई बेल नहीं, कुछ भी नहीं, यार ये दीदी का कमरा है, ये ईशु दादी का कमरा है, अपन अंदर कैसे जाएंगे, जरा ठोकते हैं। ऐसा उन दिनों में देहभान कुछ भी नहीं था। हम सहजी बहनों के कमरे में जाते थे, बहनें भी सहजी आती थी और अपना कारोबार, तो मैं बहनों के दादियों के कमरे से जाके बाबा के कमरे में जाता था क्योंकि बाबा के कमरे के बाजू में जहाँ ट्रांसलेट है उधर एक दरवाजा है, उसके बाजू में मम्मा का कमरा था, मम्मा वहां से बाबा के पास आती जाती रहती थी। तो ऐसे बहनों के कमरे में जाके जब तक उन सीजन में बाबा के पास रहा, तो बाबा ने रोज हमको घी का कटोरा सूखा मेवा भर के पिया है। इसलिए बाबा जो है यज्ञ में आप जितने भी सर्विस करते हो, कर्मणा करते हो या कुछ भी करते हो, बाबा उसका रिटर्न जरूर देता है। आप जानो या ना जानो, बाबा रिटर्न जरूर देता है, ये अपनी गारंटी है। इसलिए कभी भी कोई भाई किसी भी बात में नाराज ना होवे, बहनों ने इतना काम कराया मैं तो थक गया, कोई थकता नहीं है। बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को जाके बोलो, आपकी बाबा थकावट उतार देगा। ये सब अनुभव मैंने पर्सनली किए हुए है। इसलिए कभी भी बाबा से जितनी बात, कभी भी किसी बात में नेगेटिव मत सोचो, जो होना होगा कल्याणकारी है। आप तो रोज की मुरली सुनते ही है, हम संगम युग में है तो हमारा अकल्याण कैसे हो सकता है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता, हमारे संकल्प अकल्याण कर देते हैं। बाकी ड्रामा में अकल्याण है नहीं, हम जो नेगेटिव संकल्प करते हैं ना वो कम संकल्प की सिद्धि हो जाती है और वो कारोबार बिगड़ जाता है। अगर आप पॉजिटिव संकल्प करो, संगम युग में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। ओम शांति।
Thank you. तांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना।